ओम आपवित्र पवित्र ओम आपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतो पिवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सभयाप्यंतरा सूचि दिस श्लोका रिवील्स टू अस द वेरी हार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन
यह श्लोक हमें दीक्षा के मूल तत्व या उसके सार को प्रकट करता है.
प्यूरिफाइड और अनप्यूरिफाइड और इवन हैविंग पास्ड थ्रू ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ वन हू रिमेंबर्स द ब्यूटीफुल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हू हैज लोटस लाइक आईज is purified from within and without.
चाहे कोई व्यक्ति पवित्र हो या अपवित्र या जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से क्यों ना गुजर चुका हो, यदि वह कमल नेत्र भगवान का स्मरण करता है तो वो अंदर से और बाहर से पूर्णतः पवित्र हो जाता है.
The nature of the soul or the atma is it is part and parcel of Krishna.
आत्मा का स्वभाव है कि भगवान श्री कृष्ण का अंश है.
अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत प्रवचन्ते मम बूढ़ भाव समन्विता. एवरीथिंग ऑल दैट इज मटेरियल एंड ऑल दैट इज स्पिरिचुअल हैज इट्स ओरिजिन इन कृष्ण.
चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं.
द वाइज हू अंडरस्टैंड दिस परफेक्टली engage in Krishna's loving devotional service and worship him with all their hearts.
ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसे समझता है वो पूरे हृदय के साथ भगवान की सेवा में संलग्न होता है.
Lord Chaitanya thought jivara swarupoy krishna ranitya das. Our nature is to serve krishna with love.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि जीव का स्वभाव है कि प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करना.
But for love to be true there must be free will.
किंतु सच्चा प्रेम होने के लिए स्वतंत्र इच्छा आवश्यक है.
By the inconceivable power of God, he knows perfectly how to create in such a way that the highest, most pleasurable ecstasy of love is affordable to every living entity.
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति से इस प्रकार निर्माण किया है कि हम उनकी सेवा कर सकें.
Therefore, the Lord creates us all with free will.
इसलिए भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है.
Because we are qualitatively one with God.
क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के समान हैं.
We are eternal, full of knowledge, full of bliss.
हम भी सच्चिदानंद हैं.
But quantitatively we are like a sun ray in relation to the sun, a tiny fragmental portion.
किंतु मात्रा की दृष्टि से हम बहुत ही तुच्छ हैं, जिस प्रकार से सूर्य के सामने सूर्य की किरण तुच्छ होती है.
The Vedas describe nityo nityanam chaitanas chaitananam eko bahunam yo vridati kaman. There is one supreme eternal and there are many many part and parcel eternals who are always subordinate to that one supreme.
Shastra mein batate hain ki ek param nitya hai aur anek anek nitya jeev hain jo unke antargat rehte hain.
As the Lord is swarat or completely independent, he gives us some independence as well.
Swarat hone ke karan bhagwan hame bhi थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं.
When we choose by our sweet will to not serve the Lord with love, but try to exploit the resources of the Lord, then the Lord gives us the facility within the domain of Maya.
जब हम स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने का चुनाव नहीं करते और वो करने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमें इस भौतिक जगत में माया के अंदर डाल देते हैं.
Maya means that which is not.
माया वह है, माया का अर्थ है कि वह जो नहीं है.
We are eternal souls, but we are thinking we are this body and this mind.
हम शाश्वत आत्मा हैं, किंतु हम अपने आप को ये शरीर और मन सोच रहे हैं.
And we are trying to enjoy through the body and mind.
और हम मन और शरीर के द्वारा भोग करने का प्रयास कर रहे हैं.
The body and mind are real.
मन और शरीर सच्चा है.
And the soul is real.
और आत्मा भी सच्ची है.
But for the soul to identify that I am the enjoyer of body and mind, that is illusion.
किंतु जब आत्मा ये सोचती है कि मैं शरीर और मन हूँ, तो
it is a mistake. And it is the cause of all suffering.
और यही सभी कष्टों का कारण है.
Why are we all looking for pleasure?
हम सब क्यों सुख की खोज में हैं?
Anandamayobhyasat, because our nature is to enjoy spiritual pleasure.
क्योंकि हमारा स्वभाव आध्यात्मिक सुख का आनंद लेना है.
But forgetful of our true identity and our relationship with Bhagavan, we are seeking the pleasure of God's love through the temporary objects and relationships of this world of Maya.
किंतु भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूलकर हम इस भौतिक जगत में माया के संग में सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं.
And for every action there is an equal karmic reaction.
और प्रत्येक कर्म के लिए उसका प्रतिफल भी है.
And the Lord has so kindly created 8,400,000 species of life as different facilities to enjoy and suffer within this world according to our karma.
और भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार 84,00,000 विभिन्न प्रकार की योनियों का निर्माण किया है जिससे हम सुख और दुख का भोग कर सकें.
Thus, birth after birth, we must endure the sufferings of Ariyatma, of our own body and mind, of Adi Daivaka, the sufferings of natural oppressions, and the sufferings of Adi Bhautika, caused by other living beings.
और इस प्रकार जन जन्मांतर से हम अपने शरीर और मन द्वारा व्याधियां, दूसरों के द्वारा दी गई व्याधियां और प्राकृतिक क्लेशों को सह रहे हैं.
जन्म मृत्यु चार व्याधि दुख दोषण उदारशनम एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ कॉज अस सो मच ट्रबल.
जन्म मृत्यु जरा और व्याधि हमें कितने अधिक कष्ट प्रदान करते हैं.
बट द लॉर्ड इज ऑल मर्सीफुल.
किंतु भगवान सर्व कृपामय है.
अहम बीज प्रतापीता, he is the father and mother of every living being.
वे प्रत्येक जीव के माता और पिता हैं.
We may give up and forget our father, but the father never forgets the son.
हम अपने पिता को भूल सकते हैं, किंतु पिता कभी अपने पुत्र को नहीं भूलता.
In whatever species of life the soul travels due to its independent karma, the Paramatma, the Super Soul, the Lord is always by our side, waiting for us to turn to Him.
आत्मा अपने स्वतंत्र इच्छा से किसी भी योनि में क्यों ना जाए, किंतु परमात्मा सदैव उसके हृदय में उसके साथ रहते हैं.
And He descends to this world just to attract our hearts and teach us the process to be happy.
और वे इस जगत में अवतार लेते हैं हमें आकर्षित करने के लिए और हमें सुखी कैसे रहा जाए वो सिखाने के लिए.
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युतनम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम. इन एवरी मिलेनियम ही कम्स टू डिलीवर अस.
प्रत्येक युग में वे हमारा उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं.
बट ही गिव्स अस ऑलवेज द फ्री विल टू एक्सेप्ट हिम और रिजेक्ट हिम, टू एक्सेप्ट हिज टीचिंग्स और रिजेक्ट हिज टीचिंग्स.
किंतु वे सदैव हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं, चाहे तो हम उन्हें स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें, चाहे उनके निर्देशों को स्वीकार है या नहीं स्वीकार है.
लॉर्ड चैतन्य टोल्ड रूप गोस्वामी दैट द लिविंग एंटिटी ट्रैवल्स थ्रू दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस फॉर काउंटलेस बर्थ्स.
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताया किस प्रकार से जीव अनंत कोटि योनियों में इस भ्रमण में भ्रमण करता है.
When he is most fortunate, he comes in contact with the true devotees of the Lord.
और जब उसके भाग्य का उदय होता है तो वो भगवान के सच्चे भक्तों के संपर्क में आता है.
इन दैट एसोसिएशन द नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर भक्ति फॉर लविंग सर्विस अवेकन्स विद इन द हार्ट.
और ऐसे भक्तों के संग में उसकी स्वाभाविक भक्ति हृदय में जागृत होती है.
इट हैज बीन डोरमेंट, इट हैज बीन स्लीपिंग सिंस टाइम इमेमोरियल.
ऐसी भक्ति जो अनंत काल से उसके हृदय में सुप्त थी.
बट इन द एसोसिएशन ऑफ दोज हु लव कृष्णा इट बिगिंस टू अवेकन.
किंतु ऐसे भक्तों के संग में जो कृष्ण से प्रेम करते हैं वो भक्ति जागृत होने लगती है.
दोष तथा साधु संगोता वचन क्रिया फ्रॉम दैट फेथ वी एक्चुअली फील द जॉय ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द एसोसिएशन ऑफ साधुस.
और श्रद्धा के द्वारा साधुओं के संग में हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने लगते हैं.
एंड इन दैट एसोसिएशन वी ग्रेजुअली बिकम सिंसियर.
और ऐसे भक्तों के संग में हम गंभीर होने लगते हैं.
एंड देन वी अप्रोच गुरु.
और तब हम गुरु की शरण लेते हैं.
हु इज गुरु?
गुरु कौन है?
गुरु इज नॉट गॉड.
गुरु भगवान नहीं है.
गुरु इज नॉट अ मैजिशियन.
गुरु कोई जादूगर नहीं है.
गुरु इज सिंपली द हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड.
गुरु भगवान के नम्र सेवक हैं.
हु विथ हिज प्योर हार्ट रिवील्स द ट्रूथ टू अस.
जो अपने शुद्ध हृदय से हमारे समक्ष सत्य को प्रकट करते हैं.
बाय रिवीलिंग द ट्रू टीचिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स एज दे हैव बीन प्रिजर्व्ड थ्रू परंपरा.
और परंपरा के माध्यम से जिन शिक्षाओं को सुरक्षित रखा गया है उन शिक्षाओं को प्रदान करते हैं.
एवं परंपरा प्राप्तम कृष्ण एस्टैब्लिशेस दैट नॉलेज मस्ट बी डिसेंडिंग थ्रू परंपरा.
भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान को परंपरा के माध्यम से स्वीकारना चाहिए.
एंड द स्पिरिचुअल मास्टर He reveals the truth to us by his words, by his example, by his prayers.
और गुरु अपनी वाणी, अपने उदाहरण और अपने प्रार्थनाओं से सत्य को हमें प्रदान करते हैं.
Therefore, the spiritual master is the representative of the Lord's love and mercy in the life of the disciple.
इसीलिए शिष्य के जीवन में गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं.
God's love is flowing through the spiritual master to deliver us.
भगवान का प्रेम गुरु के माध्यम से हमारा उद्धार करने के लिए प्रवाहित होता है.
And how do we reciprocate with this love?
और हम कैसे इस प्रेम से आदान प्रदान कर सकते हैं?
This is explained by Lord Sri Krishna in the fourth chapter of Bhagavad Gita.
भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं.
आद्विति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम् ज्ञानी नास्तिक दर्शन. वी अप्रोच गुरु इन ए हम्बल स्टेट ऑफ माइंड.
हम नम्र भाव से गुरु की शरण में जाएं.
एग्जाम्पल इन द गीता इटसेल्फ इज अर्जुन.
उदाहरण के लिए भगवद्गीता में ही अर्जुन का उदाहरण है.
ही वॉज अ लर्नड स्कॉलर.
वे बहुत बड़े विद्वान थे.
ही वॉज अ ग्रेट पावरफुल स्टेट्समैन.
बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय थे.
अनडिफीटेबल वॉरियर.
अपराजित योद्धा.
इंटीमेट फ्रेंड ऑफ गॉड हिमसेल्फ.
भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र.
फ्रॉम द हाईएस्ट फैमिली ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द कुरुस.
और वो कुरु की सर्वोच्च वंश से थे.
बट व्हेन ही अप्रोच्ड कृष्ण खरपान्यतो सोपहतास्व बाबा पृच्छामि त्वं धर्म समुदचया. ही अप्रोच्ड विद फोल्डेड हैंड्स. आई नो नथिंग कृष्ण. आई एम इन अ डेस्परेट स्टेट ऑफ इग्नोरेंस. Please save me and speak to me.
किंतु जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे कि हे कृष्ण मैं अज्ञानता में हूँ कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए.
So approaching guru is not a formality.
गुरु के पास जाना कोई औपचारिकता नहीं है.
Because Krishna will reciprocate with us according to how we approach our guru.
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे जैसे हम गुरु के पास जाएंगे.
यस्य प्रसाद भगवत प्रसारो यस्य प्रसाद नागति कुतोपि. इफ वी प्लीज गुरु वी प्लीज कृष्ण. इफ वी डिसप्लीज गुरु वी डिसप्लीज कृष्ण. स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड.
यदि हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करते हैं. यदि गुरु को अप्रसन्न करते हैं तो भगवान को अप्रसन्न करते हैं. आध्यात्मिक जीवन को समझना अत्यंत सरल है.
द स्पिरिचुअल मास्टर When should not be approached with our false ego of who we are and who we know and what we have done.
हमें इस अहंकार के साथ गुरु के पास नहीं जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ मुझे क्या क्या मालूम है.
They block the flow of mercy. These egoistic attachments.
इस प्रकार के अहंकारी आसक्ति कृपा के प्रभाव को रोक देती है.
Therefore, great souls like Sanatan Goswami, Rupa Goswami, Maharaj Parikshit, Arjuna, when they approach their guru, I'm the most fallen, I'm the most sinful, I'm the most ignorant. Please save me.
इसलिए जो महात्मा है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि जब भी अपने गुरु के पास गए तो इस भाव से गए कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए.
प्लीज इल्यूमिनेट माई हार्ट.
मेरे हृदय में ज्ञान प्रदान कीजिए.
एंड द परमात्मा इन योर ओन हार्ट इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग योर ह्यूमिलिटी थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर.
और परमात्मा आपके हृदय में गुरु के माध्यम से आपके नम्रता को स्वीकार करते हैं.
श्रीला प्रभुपाद गिव्स एग्जाम्पल दैट देयर आर मेनी boxes on the side of the road, but only the authorized government post box will deliver your message.
Prabhupada ji udharan dete hain ki sadak ke aur bahut sare dak ke dabbe honge, kintu jo pramanik sarkar ke dwara lagaya gaya hai wahi pramanik
hoga. Unless the guru is serving his guru in parampara,
jab tak guru apni parampara mein apne guru ki seva nahi kar raha hoga,
and is authorized through this process,
और जब तक वो प्रामाणिक नहीं होगा इस विधि में,
he cannot actually play the function properly.
और तो वो अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा.
The function is whatever we offer him, he keeps nothing. It's simply given through parampara to Krishna.
और गुरु को जो मिलता है वो अपने पास कुछ नहीं रखता, परंपरा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को दे देता है.
And he doesn't add or subtract anything. He simply repeats the message of Krishna.
और वो कुछ संदेश में घटाता बढ़ाता नहीं है, भगवान के संदेश को यथारूप प्रस्तुत करता है.
Then we inquire in this humble spirit.
तो हमें इस नम्र भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए.
Arjuna listened attentively to every word of Krishna in Gita.
अर्जुन ने गीता में ध्यानपूर्वक भगवान के एक शब्द को सुना.
Before he accepted Krishna formally as guru in the Gita, he was giving argument.
Krishna ko guru swikar karan se pehle Gita mein Arjun alag alag tark de rahe the.
But at the time he accepted Krishna as guru, there was no more argument or debate. There was simply humble, submissive inquiry.
Kintu guru swikar ke pashchat unhone Krishna se tark nahi kiye, abhi to namrata purvak jigyasaen ki.
Krishna spoke Gita to Arjun. And in the end he said, now Arjun, you are free to do whatever you so desire.
Bhagavan Sri Krishna Gita ko upadesh diya aur ant mein Arjun se kaha ki jo tumhari ichcha hai wo karo.
Sevaya. Arjuna activated with great sincerity whatever Krishna spoke in his life.
Aur Arjun ne bahut hi gambhirta ke sath bhagwan ke vachanon ko pura kiya.
That is the path of supreme perfection.
Yehi sarvaj purnata ka marg hai.
Krishna is all attractive.
Krishna sarva akarshak hai.
His beautiful lotus like eyes are the ultimate source of everyone's happiness.
Unke sundar kamal netra pratyek vastu ke anand ke param srot hai.
Pundarikaksham. We become purified when those lotus eyes glance upon us with pleasure.
Aur jab ve sundar net hamari or dekhte hain to hamara shuddhikaran ho jata hai.
Today his grace Devamrit Prabhu was speaking about the life of Sri Ramanujacharya.
Aaj his grace Devamrit Prabhu Ramanujacharya ke jeevan par bata rahe the.
In his life there is a nice story I would like to tell briefly in this regard.
Aur unke jeevan mein ek aur sundar katha hai, sankshep mein batana chahunga.
A very strong, handsome young man named Dhanurdas was on the side of a road when there was a beautiful procession of the deity of Lord Vishnu.
Ek bahut hi balwan vyakti jiska naam tha Dhanurdas, wo sadak ke kinare khada tha jab bhagwan ki yatra ja rahi thi.
People were singing so nice bhajans, kirtans and vedic mantras.
Aur bhakt bahut sundar bhajan kirtan aur vedic mantra ko uchcharan kar rahe the.
But everyone was gazing with great sincerity upon the form of the Lord who came out to the street to bless them.
सभी व्यक्ति बहुत ही उत्सुकता से भगवान के मुख को देख रहे थे जो दर्शन देने के लिए बाहर आए थे मंदिर से.
Ramanujacharya took note that this Dhanurdas, his constant glance was on a beautiful woman as he held an umbrella over her to protect her from the sun.
किंतु रामानुजाचार्य ने ध्यान दिया कि धनुर्दास थे एक स्त्री को ध्यान से देख रहे थे और उसके ऊपर छतरी लेके खड़े थे.
He asked Dhanurdas, "Tell me, everyone is at the procession and you're looking at this lady. Do you not understand how it appears?"
तो रामानुजाचार्य ने कहा कि धनुर्दास सब लोग भगवान की यात्रा में हैं और तुम यहाँ हो, तुम्हें कुछ अलग से नहीं लग रहा?
He said, "She's so beautiful. Her eyes are so enchanting."
उसने कहा कि नहीं, ये इतनी सुंदर है, इसकी आंखें इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली
है. It is not possible for me to take my gaze away from her.
और मैं अपनी दृष्टि को इसके चेहरे से नहीं हटा सकता.
Now Ramanujacharya did not tell him to poke out his eyes.
रामानुजाचार्य ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम उनकी आंखें निकाल लो.
He did not tell him to meditate on nothing.
उन्होंने उन्हें शून्य पर ध्यान करने के लिए नहीं कहा.
And root out all of these material desires.
और सब इन भौतिक इच्छाओं को समाप्त करने के लिए नहीं कहा.
He was a Vaishnavacharya.
वे वैष्णव आचार्य थे.
He knew the science of how to transform a person's heart.
व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करने का विज्ञान जानते थे.
Krishna tells in Gita that param drisvani vartate. विषयावनिवार्तन्ते निराहारस्य देहिना रासबारजम रसोप्यस्य परम दृष्वानिवार्तते. इफ यू वांट टू गिव अप दीज लोअर मटेरियल डिजायर्स वी मस्ट एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्लेजर.
भगवान भगवतम बताते हैं कि यदि हम निम्न भौतिक रस को त्यागना चाहते हैं तो हमें कुछ आध्यात्मिक रस का स्वादन करना होगा.
He said, "If I show you something more beautiful than this lady's eyes, then will you accept that?"
उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हें इस स्त्री से भी अधिक सुंदर किसी की आंखें दिखाऊं तो क्या तुम इसको स्वीकार करोगे?
He said, "Certainly, but it's impossible. There is nothing so beautiful as her eyes."
उन्होंने कहा, करूंगा, किंतु मुझे विश्वास है कि यह असंभव है. इनकी आंखों से सुंदर किसी की आंखें नहीं हो सकती.
So he brought him to the temple of Sri Ranganath Swami.
तो वे उनको श्री रंगनाथ स्वामी के मंदिर में लेकर आए.
And during the aarti, the pujari waved the lamp of fire before the lotus eyes of Lord Narayan.
और आरती के दौरान पुजारी दीपक को भगवान नारायण के नेत्रों के पास लेकर आए.
By the grace of Ramanujacharya, by the prayer of Ramanujacharya, he was able to actually experience the beauty of the Lord's eyes.
और भगवान रामानुजाचार्य की कृपा से और उनके प्रार्थनाओं से वे वास्तव में भगवान की सुंदरता को देख पाए.
So many people go to the temple and see Shri Bhagavan, but their hearts do not transform.
बहुत सारे लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं किंतु उनका हृदय नहीं परिवर्तित होता.
But because he submitted to the desire of a great Vaishnavacharya, the Lord prayed for him. I mean, the Ramanujacharya prayed for him. The Lord reciprocated with Ramanujacharya's mercy upon him and revealed his beauty.
और क्योंकि वे पूरी तरह से वैष्णवाचार्य के प्रति समर्पित थे, इसीलिए भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उनके साथ आदान प्रदान किया.
From that moment he surrendered to Lord Narayan.
और उसी क्षण वे भगवान नारायण के प्रति समर्पित हो गए.
Ramanujacharya gave him and his lady initiation. They were married.
रामानुजाचार्य ने उन्हें और उस स्त्री को दीक्षा दी और उनका विवाह हुआ.
And they became two of the greatest Vaishnavas in the world.
और वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों में से एक बने.
Their only relationship was together serving Guru Vaishnavas and Thakur Ji Shri Krishna.
और उनका एक ही उद्देश्य था कि गुरु वैष्णव और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना.
They had no concern with any egoistic material attachments. They performed their duties as grihasthas in the most exemplary way.
वे सभी प्रकार की अहंकारी और भौतिक आसक्तियों से मुक्त थे.
सो यस, इन दिस वर्स वी रीड ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयाभ्यंतरा सूची. Even if we're in an impure state, if we simply remember the Lord, who is all attractive, with lotus-like eyes, we become purified within and without.
तो इस श्लोक में हम पढ़ते हैं कि चाहे हम अपवित्र भी क्यों ना हो, किंतु यदि हम सुंदर नेत्र वाले भगवान का स्मरण करते हैं तो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं.
On the impersonal path of transcendence, we try to purify ourselves by exterminating our ego and all of its desires.
निराकारवाद के मार्ग पर हम अपने अहंकार को और अपने अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करते हैं.
But on the path of bhakti, we try to reawaken our eternal, natural, spiritual desires by remembering Krishna.
किंतु भक्ति मार्ग में हम भगवान श्री कृष्ण स्मरण कर अपनी मूल स्वरूप को जागृत करने का प्रयास करते हैं.
Srimad Bhagavatam, Kapila Dev told his mother that the Vedas give innumerable injunctions, instructions, and philosophical principles.
Kapil Dev, जब Srimad Bhagavatam में देवहूति को बताते हैं कि वेदों में अनेक अनेक नियम दिए गए हैं.
But they are all meant to fulfill the two essential instructions of the Lord.
किंतु वे सभी नियम भगवान के दो निर्देशों का पालन करने के लिए हैं.
To always remember Krishna,
कि हमें सदैव भगवान का स्मरण करना है.
And to never forget Krishna,
और हमें कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं है.
Because Krishna is absolute,
क्योंकि कृष्ण पूर्ण है.
He is non different than his form,
वे अपने रूप से अभिन्न है.
He is non different than his pastimes,
वे अपनी लीलाओं से अभिन्न है.
His abode,
उनके धाम से.
His qualities,
उनके गुणों से.
एंड स्पेशली हिज होली नेम,
और विशेष रूप से उनके नाम से.
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह. द लॉर्ड हैज एम्पावर्ड हिज नेम विद हिज डिवाइन एट्रीब्यूट्स.
भगवान ने अपने नाम में समस्त शक्तियां डाल दी हैं.
द नेम इज चिंतामणि,
नाम चिंतामणि है.
यू नो द स्टोरी, सनातन गोस्वामी, वन मैन अप्रोच्ड हिम फॉर a touchstone.
एक बार एक व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास चिंतामणि के लिए आया.
Which could turn iron into gold,
जो लोहे को सोना बना सकती है.
The man was curious why he keeps it in a pile of rubbish.
किंतु वह व्यक्ति उत्सुक हो गया क्यों सनातन गोस्वामी ने उसे कचरे के डब्बे में रखा है.
You must have something better than this if you keep the touchstone in the rubbish section.
यदि आप चिंतामणि को आपने कचरे में रखा है तो आपके पास इससे भी अधिक मूल्यवान कुछ होगा.
He said, "Yes, I have something unlimitedly more valuable than a touchstone."
कहा, मेरे पास एक पात चिंतामणि से भी अधिक मूल्यवान कुछ है.
Touchstone can give you thousands of kilos of gold, pure gold, every day.
चिंतामणि आपको प्रतिदिन हजारों किलो शुद्ध सोना दे सकता है.
But that gold will not relieve you of the burning fire of material suffering.
किंतु वो सोना आपको भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त नहीं कर सकता.
It will not save you from old age, disease, and death.
वो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकता.
That gold of this, and gold could buy anything of this world.
इस जगत में सोने से आप सब कुछ खरीद सकते हो.
But it cannot give you real happiness.
किंतु आपको सच्चा सुख नहीं दे सकता.
But the real chintamani, the real touchstone, is God's holy name.
किंतु जो सच्ची चिंतामणि है वो भगवान का
नाम. नाम अकारी बहुदा निज सर्वशक्ति, because the Lord has impregnated his name with all of his divine, all attractive potencies.
क्योंकि भगवान ने अपने नाम में अपनी सभी शक्तियां निवेशित की हैं.
Simply by chanting the holy name, we associate with Krishna.
केवल भगवान के नाम का स्मरण करके हम भगवान के साथ संग करते हैं.
Hare. Very good. Just by Radha Kund Prabhu's nodding his head, it will stop. The holy name of the Lord is the most merciful manifestation of the Lord.
भगवान का पवित्र नाम उनका सर्वाधिक कृपामय अवतार है.
Because the Lord in His name is with us anywhere, everywhere, and willing to reciprocate.
क्योंकि भगवान का नाम हमारे साथ किसी परिस्थिति में हर क्षण रहता है, हमारे साथ आदान प्रदान करता है.
There are no hard and fast rules for chanting the holy names.
और भगवान के नाम के कीर्तन के लिए कोई कठोर नियम नहीं है.
We can chant anywhere.
हम कहीं भी कीर्तन कर सकते हैं.
This holy name does not consider our qualifications or disqualifications.
इसके नाम कीर्तन के लिए योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं है.
Therefore the Lord taught Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Krishna descends in His name in this age of Kali.
Kali में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं.
And there is no other way of attaining complete spiritual perfection except through the revelation that is derived through the mercy of the holy name.
और हरिनाम की कृपा के बिना आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना असंभव है.
Therefore, on this auspicious ceremony of initiation, we take vow to every day chant the holy name with great sincerity and attention.
इसलिए हम दीक्षा के पवित्र अवसर पर निरंतर प्रतिदिन हरिनाम करने का वचन लेते हैं.
Satatam kirtayanto mam yatantas chadritavrita. Krishna describes that the pure souls, they are constantly chanting my names.
भगवान बताते हैं कि शुद्ध भक्त हैं, सदैव मेरे नाम का कीर्तन करते हैं.
At the beginning stages, we take a vow to chant upon initiation at least 16 rounds.
आरंभ में दीक्षा के समय हम कम से कम 16 माला जप करने का व्रत लेते हैं.
When Srila Prabhupada first came to New York City, he told the devotees they must chant 64 rounds every day.
जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में आए तो उन्होंने भक्तों से कहा कि प्रत्येक भक्त को 64 माला का जप करना है प्रतिदिन.
But that was very difficult.
किंतु बहुत कठिन था.
He said then 32.
उनका ठीक है 32 माला का.
But even that was very difficult.
किंतु वह भी बहुत कठिन था.
So he said 16, but I cannot go lower than that.
ठीक है 16, उससे कम नहीं हो सकता.
But by His grace, if we just chant these 16 rounds sincerely, we will get credit of chanting 64.
तो यदि हम उनकी कृपा से 16 माला का जप करें तो हमें 64 माला करने का श्रेय मिलेगा.
And what is the process of chanting correctly?
और सही रूप से जप करने की क्या विधि है?
We must orchestrate our whole life so that our consciousness is in the proper state to reciprocate with the mercy of the holy name.
हमें अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिसे हम हरिनाम की कृपा के प्रति आदान प्रदान कर सकें.
Therefore, we must guard against the 10 offenses to the holy names.
इसलिए हमें हरिनाम के प्रति 10 अपराधों से बचना चाहिए.
You may all please very sincerely recite the 10 offenses to the holy names.
तो 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं. पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना. दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना. तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना. चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना. पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना. छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप. सातवा, हरिनाम के बल पर पाप करना. आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड समझना. नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना. और दसवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना. ध्यानपूर्वक जप न करना भी एक अपराध है.
लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु taught, if we follow one instruction carefully, we will naturally be protected from the 10 offenses And the name will reveal its true glory very quickly.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि यदि हम एक निर्देश का ध्यान पूर्वक पालन करें तो स्वाभाविक रूप से हम अपराधों से बच सकते हैं और हरे नाम हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है.
Trinarapi sunichena. To be humble like the blade of grass.
त्रिण से भेद के नम्र बनना.
Taror iva sahishnava. To be tolerant like a tree.
एक वृक्ष के समान सहनशील होना.
अमानी न मान देना. टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स.
प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना.
एंड एक्सपेक्ट नॉन इन रिटर्न.
और बदले में किसी वस्तु की इच्छा न करना.
कीर्तनीय सदा हरि. इन दिस स्टेट ऑफ माइंड कृष्ण विल बी सो प्लीज्ड. ही विल रिवील नामामृत, द नेक्टर ऑफ द होली नेम. And then we will naturally chant constantly.
और इससे भगवान इतने प्रसन्न होंगे कि हमें नामामृत प्रदान करेंगे और हम निरंतर भगवान का कीर्तन कर पाएंगे.
Lord Chaitanya taught us by his own example and through all the great acharyas through history how to apply this verse in our practical lives.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने एवं अन्य आचार्य के द्वारा सिखाया कि कैसे श्लोक अपने जीवन में उतारें.
गोपी भारथुअर पद कमलयोर दास दास अनुदास टू एस्पायर टू बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट.
दासों का दास बनने की इच्छा रखना.
इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ टू नॉट वांट टू बी एंजॉयर और एक्सप्लॉयटर. But always use every opportunity to serve the Lord.
जीवन की किसी परिस्थिति में भोक्ता बनने का प्रयास न करना और भगवान की सेवा करने का प्रयास करना.
कनिष्ठ अधिकारी serves the Lord in the temple.
कनिष्ठ अधिकारी मंदिर में भगवान की सेवा करता है.
But a more elevated state is to understand that real worship of the Lord in the temple is to expand that to the service of the Lord's devotees.
किंतु उससे प्रकट भक्त समझता है कि भगवान की वास्तविक सेवा उनके भक्तों की सेवा करने में है.
To serve the Vaishnavas is the path to Krishna's heart.
वैष्णव की सेवा हमें कृष्ण के हृदय तक लेके जाती है.
To offend the Vaishnavas is the path to darkness.
और वैष्णव का अपराध करना वो अंधकार का मार्ग है.
But we must serve with a desire to help, with a desire to please.
और हमें दूसरों को प्रसन्न करने के भाव से उनकी सेवा करनी है.
वैष्णव सेवा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति.
वैष्णव सेवा भक्ति के सभी सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण है.
बट अ रियल डिवोटी एक्सपैंड्स बियॉन्ड दैट.
किंतु सच्चा भक्त इससे भी ऊपर जाता है.
A real devotee wants to be the servant of every living entity.
एक सच्चा भक्त प्रत्येक जीव का दास बनना चाहता है.
Knowing that every living entity is a child of God.
यह जानते हुए कि प्रत्येक जीव भगवान की संतान है.
Even the naughtymost living entity is still loved by God.
और यहाँ तक कि जो सबसे विद्रोही जीव है भगवान उससे प्रेम करते हैं.
Therefore, a devotee is servant of everyone in all circumstances.
इसलिए भक्त प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक जीव का दास रहता है.
Through spiritual training, we are taught very exactly how we could render favorable service in all circumstances to every type of living being.
आध्यात्मिक प्रशिक्षण के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि कैसे प्रत्येक जीव की सेवा की जाए.
To our superiors, who are devotees. We worship them like we worship God.
जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं हम भगवान के समान उनकी पूजा करते हैं.
Devamrit Prabhu was speaking in class today about the different types of gurus that act on behalf of God to give us mercy in this world.
Devamrit Prabhu बता रहे थे भगवान अलग अलग इस प्रकार से अलग अलग गुरुओं के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं.
There is the guru who first introduces us to the path.
एक वो गुरु हैं जो हमें इस मार्ग में लेकर आते हैं.
He has inspired us to connect ourselves to the parampara and to the path of devotion.
वे हमें प्रेरणा देते हैं और भक्ति और परंपरा से जोड़ते हैं.
Thus we must reciprocate by being ever grateful and respectful.
इसलिए हमें सदैव उनके प्रति कृतज्ञ और सम्माननीय रहना चाहिए.
And then there is the shiksha guru who by his instruction is teaching us the way of purifying our hearts through the proper life of devotion.
और उसके बाद शिक्षा गुरु हैं जो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को शुद्ध किया जाए.
He clarifies our doubts.
वे हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं.
Philosophically convinces our intelligence.
और हमें विश्वास दिलाते हैं.
And teaches us the path.
और इस मार्ग के विषय में शिक्षा देते हैं.
And there is Diksha Guru. Diksha Guru is that person who on behalf of Krishna and Parampara accepts the vows of our life in the loving service of the Lord.
और दीक्षा गुरु वे हैं जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे वचनों को स्वीकार करते हैं.
Formally connects us to the flow of the mercy of the Parampara.
और वे परंपरा की कृपा से हमें जोड़ देते हैं.
And gives us the sacred mantra on the behalf of the Lord.
और भगवान की ओर से हमें पवित्र मंत्र प्रदान करते हैं.
We must honor, respect with great devotion all of these varieties of gurus.
हमें सम्मान के साथ भक्ति के साथ इन सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए.
Then there is also the senior Vaishnavas.
और वरिष्ठ वैष्णव भी हैं.
They should be honored and served with great, great respect.
और उनका भी बहुत सम्मान के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए.
And there are those who are equal with us on the path of bhakti.
और भक्ति में कुछ भक्त हमारे बराबर के होते हैं.
We should serve them by becoming their intimate friends.
हमें उनके घनिष्ठ मित्र बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए.
By sharing our devotion with them and allowing them to share their devotion with us.
उनके भक्ति के साक्षात्कारों को बांटकर और अपने भक्ति के साक्षात्कारों को बांटकर सेवा करनी चाहिए.
But always in the spirit of service.
किंतु सदैव सेवा के भाव में.
And to those who are newer on the path, we serve them by showing compassion, by uplifting them.
और जो भक्ति में भी नए हैं हम उनके प्रति करुणा दिखा सकते हैं उनको ज्ञान देकर उनको उठाकर ऊपर.
And to materialistic people, we serve them by trying to uplift their consciousness by giving them a chance somehow or other to be connected to Krishna.
और जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनको कृष्ण से जुड़ने का अवसर देकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं.
Lord Chaitanya declared this to be para upakar, the supreme welfare work.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह परोपकार है, सर्वोच्च परोपकार.
Just like Devamrit Prabhu, he has established in one nice fortunate village the Venu Madhuri project, helping these people in their material poverty state by upgrading them with knowledge and facilities, also helping them emotionally by giving them basic direction and ethics in life, but ultimately giving them the holy name of Krishna, giving them the association of the sadhus, giving them the teachings of the Gita. This is the ultimate welfare work, to uplift a person's fallen soul.
जिस प्रकार से देवामृत प्रभु ने एक गांव में स्थापना की है वे वहां पर उनको उनके भौतिक और भावनात्मक दृष्टि से उनकी सहायता करते हैं, किंतु सर्वोच्च जो परोपकार उन्होंने किया है वो है कि उनको हरिनाम दिया, साधुओं का संग दिया और भगवद्गीता जैसे शास्त्र दिए.
A proper preacher will never preach with ego. A proper preacher shares the message of Godhead as the humble servant of the person he is delivering it to.
एक परिपक्व प्रचारक कभी घमंडी होकर प्रचार नहीं करता, अभी तो भगवान के सेवक के रूप में प्रचार करता है.
And to those who are atheistic, antagonistic and blasphemous, how do we serve them?
और जो आलोचक हैं, निंदक हैं, उनकी हम कैसे सेवा कर सकते हैं?
We serve them by showing compassion toward them by staying away.
और उनकी हम सेवा कर सकते हैं उनसे दूर रहकर.
Because if due to us they unnecessarily blaspheme the Lord, they will suffer.
क्योंकि यदि हमारे कारण में भगवान की निंदा करते हैं तो उन्हें कष्ट भोगना होगा.
And if they contaminate our hearts and take away our bhakti, how much the Lord will punish them for that.
और यदि वे हमारे हृदय को दूषित कर भक्ति को छीन लेते हैं तो भगवान उनको कितना दंड देंगे.
So in all circumstances, we are das, 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 anu, das.
तो प्रत्येक परिस्थिति में हम दास दास अनुदास हैं.
In whatever position we take in Vaishnava society, that is our identity.
वैष्णव संप्रदाय में हम कोई भी पद क्यों न स्वीकार करें किंतु वो केवल हमारा परिचय है.
Whether we're cleaning toilets, sweeping floor, cooking for the deities, worshipping the deities, preaching to thousands, becoming a guru, becoming a president, becoming a commander of the temple, these are all various positions in which we can serve the Lord, serve the devotees, and be an instrument of the Lord's compassion in this world.
हम कुछ भी क्यों न बन जाए, मंदिर साफ करें, भगवान की सेवा करें, प्रचार करें, किंतु प्रत्येक परिस्थिति में हमें भगवान की सेवा करनी है.
So the spirit of initiation is the spirit of accepting an eternal life of servitude.
तो दीक्षा स्वीकार करने का अर्थ है कि जीवन भर सेवा के भाव को स्वीकार करना.
Cultivating the real spirit of humility.
नम्रता की सच्ची भावना को जागृत करना.
Without humility, our service attitude is very false and unreal.
नम्रता के बिना हमारी सेवा भावना बहुत नकली और कृत्रिम है.
And in this spirit, to sincerely worship the holy name.
और इस भावना से हमें गंभीरता पूर्वक हरि नाम की सेवा करनी है.
By chanting with great sincerity.
बहुत ही गंभीरता के साथ कीर्तन जप करते हुए.
With a vow.
प्रतिज्ञा के साथ.
We follow these four regulative principles.
हम इन चार नियमों का पालन करते हैं.
No illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating. They place our consciousness on the mode of goodness and help us from falling down into the deepest bondage of passion and ignorance.
ये चार नियमों का पालन करने से हम अधोगति में जाने से बच जाते हैं.
So please understand that it is the urgent necessity to humbly serve in the association of devotees and chant the holy names.
तो मैं समझना होगा कि कितना आवश्यक है भक्तों की सेवा करना और गंभीरता पूर्वक हरि नाम का जप और कीर्तन.
That is the first and foremost order of the spiritual master.
यह गुरु का सबसे पहला निर्देश है.
Srila Prabhupada sacrificed so much of his life to give us bhakti.
Srila Prabhupada ne hame bhakti pradan karne ke liye apna pura jeevan balidan kar diya.
He brought the pure unadulterated teachings of Krishna to the whole world.
उन्होंने संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार किया.
And by the power of his compassion to all living entities, Krishna manifested himself to the world.
और उनकी करुणा की शक्ति से भगवान श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट हुए.
Therefore, he is the founder acharya of our society.
इसलिए वे हमारे संघ के संस्थापक आचार्य हैं.
He is the guru that all members of ISKCON are working together to serve and assist in his mission to his Gurudev.
तो ISKCON के सभी सदस्य वे श्रील प्रभुपाद जी की उनके गुरु की सेवा करने में उनकी सेवा कर रहे हैं.
So each of you taking initiation today, please hear carefully.
तो आप में से आज जो भी दीक्षा ले रहे हैं कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए.
You should honor and serve all of Prabhupada's disciples as you serve your guru.
जिस प्रकार से आप अपने गुरु की सेवा करते हैं उसी प्रकार से आप सभी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों की सेवा और उनका सम्मान कीजिए.
You should honor and serve all those Vaishnavas in our society who are following Prabhupada's teachings and trying to help others do the same as you or similar to the way you serve your own guru.
और जिस प्रकार से आप अपने गुरु की सेवा करते हैं उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करने वाले प्रत्येक भक्त की हमें सेवा और उनका सम्मान करना है.
And serve one another your equals and even those who are just coming to bhakti, knowing that as you serve them, that is how you are serving your Gurudev.
और अपने बराबर वाले उनकी सेवा करना और जो नए हैं भक्ति में उनकी सेवा करना यह जानकर कि उनकी सेवा करके आप अपने गुरु की सेवा करोगे.
Because that is what will please Srila Prabhupada.
क्योंकि यही श्रीला प्रभुपाद को प्रसन्न करेगा.
And all of Prabhupada's followers have only one motive in their life.
श्रीला प्रभुपाद जी के सभी अनुयायियों का केवल एक उद्देश्य है जीवन में.
To please Srila Prabhupada.
श्रीला प्रभुपाद की प्रसन्नता.
Today, you are all being offered to the lotus feet of Srila Prabhupada and through his mercy to the lotus feet of Sri Radha Gopinath.
आज आप सभी श्रीला प्रभुपाद जी के चरण कमलों में समर्पित हो रहे हो और उनकी कृपा से राधा गोपीनाथ के चरणों में.
And your good fortune will be realized according to how you follow the simple principles that we have discussed today.
और आप अपने सौभाग्य तब जानोगे जब आप उन बातों पर उन बातों का पालन करोगे जिस पर हमने आज चर्चा की.
Please take these vows as the most serious of all aspects of life.
कृपया इन प्रतिज्ञाओं को सबसे महत्वपूर्ण मानो.
And by the mercy of Sri Guru and Gauranga, you will realize the great treasure of Krishna Prem.
और गुरु और गौरांग की कृपा से आप कृष्ण प्रेम रूपी सर्वोच्च संपत्ति को समझ पाओगे.
I thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद.